शांति। एक बार चार दोस्त थे, तीन थे दृष्टिबाधित और एक ठीक ठाक था आंखों से। तो उनकी आपस में पार्टी हुई तो दोस्त ने बुलाया अंधजन जो दृष्टिबाधित थे घर में बुलाया पार्टी के लिए। बर्थडे होगा तो खीर बनाई थी। तो जो दृष्टिबाधित थे तो उन्होंने पूछा आपने क्या बनाया हुआ है, तो बोला खीर बनाई। तो वो कहते खीर कैसी होती है, तो बोला ये खीर जो है ना सफेद सफेद होती है। ये सफेद कैसा होता है, बोला दूध जैसा। दूध दूध कैसा होता है, तो बोला ये हंस जैसा होता है स्वेद स्वेद। तो बोले हंस कैसा होता है, तो उसने अपनी बाजू जो है ना फिर ये ऐसे की, क्योंकि हंस की गर्दन ऐसे होती है, तो उसने ऐसे बाजू अपनी की और दृष्टि बाधित का हाथ लिया तो उसको बोला ये ऐसे होती है। तो बोला खीर जो ना टेढ़ी है, हम नहीं खाएंगे इसको क्योंकि गले में फंस जाएगी ये। तो ये एक चुटकला था। तो हंस जो है, हंस पंछी, जितनी भी आज तक हमने मुरलियां सुनी हैं उसमें यही पाया है कि केवल एकमात्र हंस पंछी जिसके बारे में बाबा ने ज्यादा विस्तार किया है अव्यक्त वाणियों में। हालांकि साकार वाणियों में भी आता है लेकिन अव्यक्त वाणियों में हेडिंग ही कई दफा होलियंस के बारे में होता है और होलियंस की बहुत ज्यादा विशेषताएं भी हैं अन्य पंछियों से। हंस जो पंछी है वो इंडिया में मुश्किल ही है पाया जाता है, अधिकतर वो साइबेरियन कंट्री में होता है या फिर ठंडे इलाकों में पाया जाता है। और उसकी विशेषता ये है कि बहुत लंबी उड़ान भरने में सक्षम है, वो थकता नहीं है। तो इस पुरुषार्थी मार्ग में होलियंस अर्थात लंबी उड़ान भरने वाले, और उसकी गति जो है कम से कम 20-30 किलोमीटर से लेकर, बड़ा अगर स्लो चले 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा, और फास्ट से फास्ट 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकता है वो, इतनी उसकी स्पीड है। और हंस का शास्त्रों में भी गायन है, मन संसार में भी ऐसी मान्यता है कि हंस का इतना महत्व है कहा जाता है अगर उसको मार दिया, किसी ने मार दिया तो जैसे देवताओं की हत्या कर दी, क्योंकि हंस जो है वो किसका बहान है, सरस्वती का बहान है, ज्ञान का वो एक परिचायक है, दर्पण है, हमारे सामने एक उदाहरण है वो। हाँ, दूसरा हंस जो है शाकाहारी होता है, वो अधिकतर तो पानी में रहता है, नव जल या थल पर, तीनों स्थान पर रहता है, लेकिन उसका जो भोजन है वो कोमल कोमल कोपले होती हैं, घास की पत्तियां वो खाता है। आजकल जमाना बदल गया तो थोड़े छोटे मोटे कीड़े भी खा लेता है, क्योंकि संसार में ब्राह्मण भी मांसाहारी बन चुके हैं तो छोटे मोटे कीड़े भी खा लेता है, क्योंकि जैसी मनुष्य की वृत्ति हो गई है वैसी पंछियों की वृत्ति हो गई है। हाँ, और हंस में जो और विशेषताएं हैं, एक तो वो ज्ञानवान होता है, ज्ञान का वो सरस्वती विद्या देवी का जो है वाहन है, इसलिए उसको ज्ञान अर्थात समझदार बहुत माना जाता है, क्योंकि उसमें परखने की शक्ति होती है, वो हर बात को समझता है कि मुझे कंकड़ लेना है या मोती लेना है, रतन लेना है, परख लेता है। और उसके बारे में कहा जाता है नीर क्षीर अलग करते, दूध और पानी अलग अलग, तो ऐसा कुछ होता होगा, ऐसी मान्यता है कि उसकी चोंच में एक एसिड होता है, वो एसिड है जो डालने से अलग अलग होता है। तो जैसे हम भी जो दूध पीते हैं तो पेट में जाके क्या फट जाता है, तो पानी अलग होता है वो अलग हो जाता है अगर उल्टी हो जाए तो। तो हंस जो पहले मुंह से मुंह डालते फट जाता है, हमारा अंदर होता है उसका बाहर से अलग अलग हो जाता होगा। और हंस सादगी का भी प्रतीक है, और हंस सफेद है, सफेद अर्थात शांति का प्रतीक, पवित्रता का प्रतीक भी है। तो मुरली है 1 मार्च 1986 की, जो कि आज की डेट में रिपीट हो रही है 2 अगस्त 2020। तो इस मुरली में बहुत सारी विशेषताएं भाव ने होलियंस के बारे में बताई हैं। मुरली का टाइटल है होली, हंस, बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और बोल, मुख। तो ये चार बातों के ऊपर है मुरली। और फिर बाबा ने ऑस्ट्रेलिया वालों से बातचीत की है, ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न था। फिर दो तीन पार्टियां और हैं, बहुत सारी बातें इसमें हैं। तो मुख्य रूप से तो ये चार बातों पर विशेष फोकस है कि होली, हंस, बुद्धि कैसी होती है, उसकी वृत्ति कैसी होती है, और उसकी दृष्टि कैसी होती है, उसका बोल अर्थात मुख कैसा है, और उसका परिणाम बताया है। दूसरा फिर बाबा ने इशारा दिया है इसमें प्रमाण, हमको क्या करना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया वालों की विशेषताएं बाबा ने बताई है, उनका उमंग उत्साह बढ़ाया है, सेवाओं के लिए प्रोत्साहित किया है, और सेवा में सफलता का आधार क्या है वो बताया है बाबा ने। और टाइम के बारे में बताया कि टाइम वेस्ट नहीं करना है सिवाय सेवा के, सेवा में ही टाइम लगाना है। फिर बाप से प्यार की निशानी क्या है, और स्वयं की सेफ्टी का साधन क्या है उसके बारे में कुछ जिक्र किया है, और स्थिति बनाने का आधार क्या है वो वाली चीज है। और एक विशेषता, विशेष शब्द याद रखो तो कितने फायदे हो जाएंगे वो बताया है, और इस बाप और वर्षे की बात है, और संगम जो है ये सारे कल्प में जमा करने का समय ये है, और सेवा में ये जो है जमा का खाता भी कितना है, थोड़े समय का संगम जो थोड़ा सा समय है लेकिन बहुत काल के राज्य अधिकारी बन सकते हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर आधारित मुरली है, तो हम देखेंगे। और बाबा ने कहा साथ साथ में अपने आप को चेक करो, परखो कि हम कहाँ तक बने हैं। भगवान के बच्चे भाग्यवान हैं। तो सबसे पहले होली, हंस, बुद्धि के बारे में बाबा ने बताया। तो बाबा ने होली हंसों की सभा देखी, होली हंसों की क्या विशेषता है, ये सभा कौन सी है, रूहानी सभा है, रूहानी होली हंसों की सभा। तो कौन सी विशेषता है, तो पहले बाबा ने बुद्धि के बारे में बताया। होली हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, क्योंकि हमारा जो सारे क्रियाकलाप या कर्म का जो आधार है या बोल का आधार है कहाँ से शुरू होता है, हमारी सोच से। तो बाबा ने सबसे पहली हमारी नब्ज जो है सोच से पकड़ी है कि हमारी सोच शुभ है, श्रेष्ठ है। बाबा कहते चेक करो हर आत्मा के प्रति, भले वो कैसे भी है, उसके साथ बुद्धि के साथ, क्योंकि बुद्धि परखती है हर चीज को, निर्णय करती है। तो बाबा ने कहा परखो कंकड़ रतन, दोनों में से कौन चुगना है, धारण करना है उसको, कंकड़ या रतन धारण करने वाले हैं, और जैसा धारण करेंगे उसी के आधार पर हमारी सोच परिवर्तन होगी। इसलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो कंकड़ और पत्थरे जैसे एक भोजन के रूप में बाबा ने हमारे सामने रखे हैं। जैसे कई पंछी होते हैं वो तो पत्थर को भी पचा लेते हैं, केवल छोटे छोटे कंकड़ खाते हैं पचा जाते अंदर गल जाते, और कोई कोई पंछी तो कांच के टुकड़े खा के उसको भी पचा लेते हैं। तो ये भोजन है, ये कौन सा, सोच संकल्प शक्ति। तो वो बाबा ने कहा कि सदा हर आत्मा के प्रति शुभ और श्रेष्ठ सोच रखने वाले, उसी के फिर हम परखेंगे उसको, परखने के आधार पर ही वो हमारी धारणा होती है, उसी के आधार फिर हमारी भावनाएं प्रकट होती हैं, एक दूसरे के प्रति भाव बैठता है। तो कंकर और पत्थर वो कौन से धारण करने अपने को, बाबा कहते वो देखो। फिर दूसरा है हर आत्मा के प्रति वृत्ति के बारे में बताया, तो वृत्ति कौन सी होनी चाहिए, हर आत्मा के प्रति कल्याण की वृत्ति। अगर कल्याण दिखता भी है, ऐसा नहीं है नहीं दिखेगा कल्याण, अकल्याण तो दिखेगा दिखेगा, जो सामने है वो तो इन आंखों से दिखेगा दिखेगा, लेकिन हमने हावली हंस बुद्धि धारण कर ली है, अभी हमको परखने की शक्ति मिल गई है, तो हमको वृत्ति कौन सी रखनी है, हर आत्मा के प्रति कल्याणकारी वृत्ति। अकल्याण देखते हुए भी उसको कल्याण में कैसे परिवर्तन करें, ये वृत्ति रखनी है, चाहे कोई भी कैसी आत्मा हो। इसलिए बाबा ने कहा काले कोयले से भी ज्यादा क्यों ना हो, रावण से भी 10 गुना ज्यादा क्यों तेज ना हो, फिर भी हमको कल्याणकारी वृत्ति रखनी है। बीसर वाला भी रावण क्यों ना हो, क्योंकि हमारी दृष्टि वृत्ति विश्व कल्याणकारी है। तो वृत्ति भी हर आत्मा के प्रति कल्याणकारी वृत्ति हो। तीसरी बात कही बाबा ने होली हंस दृष्टि, तो दृष्टि कैसी होनी चाहिए, आत्मिक दृष्टि, शुद्ध स्नेह की दृष्टि, और कैसी दृष्टि होनी चाहिए। हम संबंध संपर्क में आते हैं, बाबा ने कल परसों भी एक मुरली हम पढ़ रहे थे, तो बाबा ने कहा भले आपको आत्मा देखने में अगर तकलीफ होती है, शरीर तो दिखाई देता है ना लंबा चौड़ा, अगर लंबा चौड़ा शरीर देखने की आदत है तो इसको फरिश्ता रूप में देखो, तुम्हारी दृष्टि फरिश्ता दृष्टि होनी चाहिए, आत्मिक दृष्टि, स्नेहमय दृष्टि। और दृष्टि कौन सी होनी चाहिए, कई बार क्लासों में जिक्र हुआ है, अगर हम आपस में मिलते हैं भाई बहन, भाई बहन को कैसे देखे, बहन भाई को कैसे देखे, हाँ अगर भाई बहन को देखता है तो वो शिव शक्ति के रूप में देखे, बहन के रूप में देखे, भाई भाई के रूप में देखे, आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में देखे, और जगत माता के रूप में देखे, और काली के रूप में भी देखे, देवी के रूप में देखे, शिव की शक्ति है वो। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमारा दृष्टिकोण है अगर आत्मा के ऊपर नहीं जाता, कम से कम ये चीजें तो हम कर सकते हैं, तो हमारा एटीट्यूड दृष्टिकोण भी बदल लेगा धीरे धीरे। और अगर बहन है भाई को कैसे देखे, हाँ बाकी तो दूसरी बातें हैं ही हैं, देवी देवता के रूप में, आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में, और फरिश्ता के रूप में, और फिर ने तो हनुमान जी के गदा के रूप में, कि एक ही पड़ेगी अगर उल्टा गणपति विघ्न विनाशक के रूप में। तो ये सारा दृष्टिकोण जो हमारा परिवर्तन, स्थूल में हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए हमारी तो यादगार बनी है जो, हाँ श्री कृष्ण के रूप में भी देख ले, कोई हर्जा नहीं, देवी देवता के रूप में देख ले, किसी भी इष्ट देव देव के रूप में देख ले, शालिग्राम के रूप में अर्थात आत्मा के रूप में, सनत सनन, वो सनत कुमार जो पांच थे, सनत सनन ऐसे पांच हैं कोई, सनत सनन कमलेश अरविंद सुखदेव से पांच हो गए, इनके रूप में देख ले, तो ये हमारा दृष्टिकोण चेंज हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है मुख, होलियंस मुख, मुख अर्थात बोल, तो बोल कैसे होने चाहिए? उमंग उत्साह वाले, कल्याणकारी बोल, व्यर्थ ब साधारण मुख से ना निकले, बहुत अटेंशन रखने की जरूरत है जी। मीठा सुखदाई मधुर बोल, उमंग उत्साह वाले, किसी को आगे बढ़ाने वाले, निंदा चुगली करने वाले नहीं, गिराने वाले नहीं, क्योंकि वरदानी बोल होने चाहिए। अगर माना है कोई एकदम मुरझा गया ऐसा बोलने के लिए जैसे उड़ने लग जाए वो, उमंग उत्साह, क्योंकि बोल का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए कहा जाता है महावाक्य जैसा, इसलिए कहा जाता है ये तीर की तरह है, एक बार मुख से निकल गया तो वो निकल गया है ना, तो घायल कर देता है। दूसरी अगर चोट लगाई है तलवार की, उसको उसको तो मल्लम पट्टी करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन मुख से निकले बोल महाभारत खड़ी कर देते हैं। महान आत्मा बोल हमारे महान आत्मा भी बना देंगे किसी को, नहीं तो महाभारत भी खड़ी कर देंगे। लेकिन महाभारत में भी महान आत्मा का रोल है, तो हमारे मुख से कैसे बोल निकलने चाहिए? तख्त पर भी पहुंचा देंगे और तख्ते पर भी लटका देंगे। हाँ, आज के स्लोगन में है, दुनिया वालों का काम है चोट पहुंचाना और आपका काम है बचाना, स्वयं को बचाना। और परसों का स्लोगन क्या था? ऐसा ही था वो भी। हाँ, क्रोधी का काम है क्रोध करना और तुम्हारा काम है स्नेह देना। तो ये चीज थी हंस मुख। इसी तरह इसलिए गायन है कमल मुख, कमल नयन, कमल हस्त, कमल चरण। तो कितने हमारे ये देवताओं से भी उत्तम हमारे बोल होने चाहिए, क्योंकि उस दिन बाबा ने कहा ना कि ऊपर से जैसे आत्मा है कि वहीं से चालू हो जाएगा, गिरना तो चालू हो जाएगा सत्युग से, लेकिन अभी जो है हमारा चढ़ती कला का है हृदय कमल। तो ये थे हमारे बोल। हाँ जी, हाँ दिल से देखिए, ये दिल से भी तभी होंगे जब लंबे समय से हम इनको, क्यों ये चीजें तुरंत होने वाली नहीं है। एक्चुअली मनुष्य या हम ब्राह्मण आत्मा डिस्टॉर्टेड तब हो जाती हैं, हम थोड़े समय में बहुत जल्दी परिणाम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ब्राह्मण जीवन बहुत ऊंचा जीवन है। इसलिए यहां तो इसलिए दीदी का कहना था झुक झुक मर मर सिख सिख, लंबे समय के बाद कुछ लगतेगा हमारे में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए इसी मुरली में बाबा ने कहा ना, जो बताया वृत्ति में, अकल्याण दिखेगा वो तो दिखेगा दिखेगा और दिखना चाहिए वो, नहीं तो हमें अपना कैसे पता चलेगा। और हमारे में अनेक जन्मों के स्वभाव संस्कार हैं, वो तुरंत थोड़े बदलेंगे, तो ऐसा नहीं कि तुरंत बदल जाएंगे, लंबे समय के प्रयास के बाद स्वयं में परिवर्तन होने का अनुभव होगा। बड़ी कहते सहज साधन है, लेकिन कठिन से कठिन साधना भी है। तो ये वृत्ति के बोल के बारे में था। फिर बाबा ने कहा ये जो संगम युग है थोड़ा समय का है, इस थोड़े समय का परिवर्तन बहुत काल में गिना जाएगा, और यही बहुत काल का परिवर्तन आपको राज्य भाग्य का अधिकारी बना देगा भविष्य में, केवल ये थोड़े समय का परिवर्तन। तो प्रक्रिया तो स्वयं को परिवर्तन करनी है, इसलिए जो पता है कि स्वयं के अनुभव हमारे तभी शक्तिशाली बनेंगे, तभी उदाहरण प्रस्तुत होंगे जब हम अंदर ही अंदर ये होली हंस की जो सारी विशेषताएं बताई हैं वो जब हम खुद बनेंगे तो हमारा चेहरा प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने लगेगा, प्रोजेक्टर की तरह, चलती फिरती लाइब्रेरी की तरह। तो ये सारी विशेषताएं लंबे समय के बाद कुछ हमारे हाथ में पता चलेगा, नहीं तो कई साल तो पता नहीं चलता है, ब्राह्मण जीवन का परिवर्तन दिखता ही नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हमारी होली हंस बुद्धि नहीं है, होली हंस वृत्ति नहीं है, होली हंस दृष्टि नहीं है, होली हंस बोल नहीं है। एक आध मास, एक सप्ताह, एक क्या कई उनका कई साल तक भी नहीं होता है, क्योंकि पिछले संस्कारों का बोझ इतना है कि नए संस्कारों को तुरंत दबा देते हैं पुराने संस्कारों का बोझ। जैसे दुख है, अब दुख जो है हम ऊपर के दुख को देख रहे हैं, लेकिन असली दुख ना बहुत नीचे बैठा हुआ है, उस दुख को हमको दिखाई नहीं दे रहा है, अपने ही दुख। हम ऊपर थोड़ा सा दुख सुख मिल गया उसी को देख रहे हैं और उसी की तुलना दूसरों से भी कर रहे हैं, लेकिन असली तो जड़ें हमारे अंदर पता नहीं कब निकलेगी वो, उछल खाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि बीमारी तो बहुत गहरी है, जन्म जन्म की है, दवाई काम करेगी, कोई जल्दी काम करती है, कोई बड़े लंबे समय के काम करती है। तो हमारे अंदर ही कई ऐसी भयानक क्रोनिक बीमारियां हो सकती हैं जो समय पर कोई भरोसा नहीं है, क्या उनसे संकल्प विचार ऐसे आ जाए तो। इसलिए सारी अपने ऊपर खबरदारी रखने की जरूरत है। हाँ, कोई बीमारी है, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। तो ये भावने का पिछाड़ी तक माया काम करती रहेगी, लेकिन इस बात को भी हमको पकड़ के नहीं बैठ जाना कि पिछाड़ी तक बनेंगे। प्रयास तो हमारा हर कदम कदम हर श्वास पर संकल्प पर रहना चाहिए। तो ये सारी बातें थी। तो बाबा ने कहा ये थोड़े समय का अटेंशन, डबल अटेंशन तो है ही है, लेकिन और अटेंशन रखने की जरूरत है, क्योंकि होली हंस अर्थात उसने व्यर्थ और साधारण को समझ लिया है कि इससे हमको नुकसान हुआ, परख लिया है। अब परखने के बाद वो हमको पता चल गया कि हमको क्या करना क्या नहीं करना है, प्रकाश उसका ज्ञान आ गया। हाँ, तीन चीजें होंगी, कौन कौन सी? मन शक्तिशाली, समय और वाणी। ये तीन चीजें बेस्ट नहीं जाएंगी, जो तीनों ऊपर बताते ना वही नीचे है। इसमें मन शक्तिशाली हो जाएगा, समय बेस्ट नहीं जाएगा और वाणी एक खत्म नहीं, क्योंकि हमको समझ मिल गई है। तो इससे क्या होगा, ये समझ आ गई तो फिर कार्य स्वतः वैसा होने लगेगा, वो तो करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक बार समझ में आ गया, मेथड हमारे हाथ में आ गया, तो क्वेश्चन का जो उसका सूत्र है हाथ में आ गया तो निकालना उसका आसान होता है सम। तो ये था, बाबा ने कहा इसके ऊपर फिर से अटेंशन दो। कौन सा? उल्टे को उल्टा नहीं करो। पता है ये उल्टा हो रहा है, लेकिन हम खुद उल्टा नहीं करें, उल्टे को सुलटा करो। ये हमारा दृष्टिकोण बदल गया, क्योंकि हमको होली हंस का एक वरदान मिल गया, हमको बाबा ने इतनी समझ दे दी, हमारी बुद्धि विशाल हो गई। तो ये सारी चीजें से हम बताई। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को विजय माला का मणका बनना है, वैजयंती माला तुम्हारा यादगार है। तो तीन बातों पर विजय, सबसे पहले स्वयं पर विजय, दूसरा सर्व पर विजय और तीसरा प्रकृति पर विजय। तो स्वयं पर विजय अर्थात स्वराज्याधिकारी, स्वराज्याधिकारी अर्थात हमारी कर्मेंद्रियों पर पूरा नियंत्रण, पूरी काबू में। अब जैसे बच्चे हैं, अब बच्चों से हमको अगर एक है शुद्ध मोह एक है अशुद्ध मोह, जिन बच्चों के साथ ऐसा मोह है अशुद्ध मोह है तो हमको उनको कुछ भी करने देते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कुछ भी करते हैं। अर्थात उसी तरह हमारी कर्मेंद्रियां भी ऐसे, इनके अंदर अशुद्ध मोह भरा हुआ है तो इनकी पूर्ति के लिए हम कुछ भी करते, कुछ भी देखते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ भी सुनते रहेंगे। और जिस बाप ने अपने बच्चों को अच्छा बढ़ाना है कि समाज में कुछ नाम रोशन करे, तो उन पर वो कड़ी नजर रखेगा, उनको उस अनुसार चलाएगा। उसी तरह से हमारी कर्मेंद्रियां भी हैं, अगर हमने इनको ढीला छोड़ दिया तो स्वयं पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे, हमारी प्रजा ही ऐसे हो रही है तो राजा कैसे होगा फिर। तो स्वयं पर विजय, स्वयं पर पूरा नियंत्रण, पूरा काबू, स्वयं पर विजय है तो दूसरों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि कहा जाता है ना स्वयं को, तो यह ऐसे कहने में आता ना पहले तो अपने आप को देख लो, कहा जाता है पहले अपनी खाट के नीचे तो हाथ घुमा के देख लो कि दूसरों को चले समझाने, ऐसे संसार में कहा जाता है। हाँ, अपने गिरेवान में झांको, है ना, गांव में या कहीं होते हैं पंच सरपंच तो वो नेचुरली उनकी जो उनको कार्य मिला होता है कि संसार के इन समस्याओं का सुलटारा करना, लेकिन कई बार उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं तो लोग तो मुंह पर कह देते हैं तो अपने गिरेवान में झांको। तो इसी तरह पहले अपने को देखना है तो फिर हम सर्व पर कर सकेंगे, तो एग्जाम्पल मूर्त बन सकेंगे, फिर कह सकते हैं अगर बच्चे देख रहे हैं तो उसके बच्चे देखो। तो उसी तरह स्वयं पर विजय होंगे तो सर्व पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। और तीसरा प्रकृति पर विजय, प्रकृति पर विजय अर्थात ये जो हमारा पंच तत्वों का मिट्टी का मिला हुआ एक ही शरीर है, ये तो है। हाँ, वो प्रकृति की समस्याओं को भी हम विजय तब पा सकते हैं जब पहले इस पंच तत्वों के शरीर पर विजय पालेंगे। तो और ये सारा संकल्पों के स्तर पर बहुत शक्तिशाली संकल्पों की जरूरत होती है। इसमें कई प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं, समय पर कुछ भी शरीर धोखा दे सकता है या संबंधी साथ नहीं देंगे, कुछ भी हो सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं। तो स्वयं पर विजय, सर्व पर विजय और प्रकृति, और प्रकृति के बीच में भावना वाला, प्रकृति में क्या क्या आता है, वातावरण, वायुमंडल, वाइब्रेशन, ये सब आ जाता है। प्रकृति की जो भी परिस्थिति है, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, अकाल पड़ेगा, बाबा ने कहा खाने को अनाज नहीं मिलेगा, व्याधियां आएंगी, तो ये अनेक प्रकार की प्रकृति जनित जो बीमारियां होंगी, जो भी समस्याएं आपदाएं हैं, उसमें भी हमको विजय, अर्थात हमारा मन हलचल ना हो, साक्षियों के देखना है। जैसे फिल्म तो बड़े प्यार से देखते हैं, उसमें जो पर्दे पर चलती है कैसे उसको प्यार से देखते हैं। अगर उसमें विनाश का कोई सीन ही ना हो तो बोले मजा ही नहीं आया। हाँ, अपने शरीर से कर्मों को भुगवाना है, अर्थात उसमें हम भोग रहे हैं ये फील नहीं करना है। जैसे शरीर अलग है, जैसे हम किसी दूसरे से कार्य करवाते हैं, ऐसे समझना कि मैं आत्म शरीर से कार्य करवा रही हूं। प्लानिंग बुद्धि, हाँ, पलंग पर नहीं है, प्लानिंग बुद्धि। हाँ, भोगना, भोग नहीं, भोगना, भोगना के रूप में भोग नहीं रहे हैं, लेकिन योजना तैयार कर रहे हैं। तो बाबा के देखो कितने अच्छी योजनाएं हैं। तो कर्म भोग को कर्म योग में बदलना है अपने। और ये कैसे होगा? इसका एक ही मात्र है, शरीर बनने का अध्यास, लंबे समय का, फरिश्तेपन का, बीज रूप का, विदेही अवस्था का, अशरीरी अवस्था का, ये सब अभ्यास आत्म अवस्था का करेंगे तो हम स्वयं पर, सर्व पर और प्रकृति पर विजय हासिल कर सकते हैं। तो ये थी अगली बात। फिर नेक्स्ट बाबा ऑस्ट्रेलिया वालों से मिलने जा रहे हैं। तो हाँ, वो सेवा में सफलता का आधार है, सेवा में सफलता का आधार है निमित्त। और निमित्त के लिए तीन बातें, निमित्तपन के होने से तीन बातें आ जाएगी, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, बावने का जो साकार का अंतिम मंत्र था। तो और इन मंत्रों के आने से क्या होगा? मैंपन और मेरापन खत्म हो जाएगा, मेहनत नहीं लगेगी, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, उड़ती कला हो जाएगी, बहुत सारी बातें उसमें हो। तो ये केवल निमित्त समझना अपने को, ये सेवा में सफलता का आधार है। क्योंकि सेवा में ऊंचा नीच कब होती है? जब उसको समझ लेते कि मेरी सेवा है। एक है उसमें कर्तव्य निष्ठा से समझना कि ऊपर वाले ने दी हुई है, मैं निमित्त हूं। लेकिन एक है उसमें पूरा अटैचमेंट हो जाना, उसमें हम 24 घंटे वही घूम रहे हैं। जितना समय जो हमको कर्तव्य दिया गया है उतना समय उसको हम पूरी तन्मयता से करें, पूरे कर्तव्य निष्ठता से। तो निमित्त भाव से करने से वो हमारी बुद्धि उससे डिटैच होना भी सहज हो जाएगी, उतना खाता जमा होगा। तो ये थी सेवा में सफलता का आधार है ये। फिर बाबा ऑस्ट्रेलिया वालों से मिल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वालों से क्या बोला बाबा ने? चांस लेने वाले क्यों, क्या कारण है उसका? चांस लेने देने वाले क्यों हैं? वो मधुबन में आए हैं तो यहां भी उनको चांस मिला आगे रखने का, ऑस्ट्रेलिया वालों को। वो इसलिए क्योंकि बाबा ने कहा वहां भी एक दो को ये चांस देने वाले हैं। शक्तियों में विशालता है पांडवों को चांस देने की, और पांडव भी शक्तियों को आगे रखते हैं। तो एक दो को चांस लेने वाले भी हैं, चांस देने वाले हैं, तो दोनों चांस ले रहे हैं। चैरिटी बिगेन एट होम है ये तो, और इनमें हिम्मत अच्छी है ना। तो ये भी वाली बात थी। और दूसरा था एक सेफ्टी का साधन बताया, कौन सा सेफ्टी का साधन कौन सा है? बाबा ने कहा सेफ्टी का साधन है कर्म में आते हैं भले निमित्त भाव है, लेकिन उसके साथ एक श्लोक याद रखना, कौन सा? जो कर्म हम करेंगे हमें देखा और करेंगे। अब इस स्लोगन से बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। बाबा ने कहा याद रखने से हम स्टेज पर हैं ये स्मृति रहेगी। और स्टेज पर होता है जो एक्टर क्या होता है उस पर उसको अपने ऊपर विशेष अटेंशन रहता है, ना केवल स्वयं का भी अटेंशन रहता है लेकिन उसके ऊपर पूरी पब्लिक का भी अटेंशन रहता है। जो मुख्य हीरो होता है सभी की आंखें उसी पर गड़ी होती हैं, उसका देखना, बोलना, चलना, उठना, खाना पीना कैसा, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, आज संसार में कौन सी हवा, फैशन की जो हवा चली है किस तरीके से चलती है, जो हीरो करता है वही करते हैं सारे। लंबे बाल कर देंगे तो लंबे बाल कर देंगे, फिर कटा देंगे तो कटा देंगे, तो कपड़े फटे हुए उसने पहने तो वही वैसा पहनेंगे। तो उसको डिजाइन बना लिया, जैसे चत्तियों वाला, तो वो जैसे हम लोग यहां करते हैं, बाबा ने कहा कि तुमको अभिमान नहीं होना चाहिए चत्तियों वाला कपड़े पहने, तो उन्होंने फटे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, वो उसमें भी अभिमान समझते हैं। अपना सब यादगार है किसी न किसी तरीके से, उतना अच्छा लगता है उनको। हाँ, वो चार प्रकार के ड्रेस भी वो दूसरी मूल्य में बताया था, देह अभिमान का, रक्त रंजित, खून धब्बे, दाग वाला। तो ये थी बात कि सेफ्टी का साधन है कि स्लोगन सदा स्मृति में रखे कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करेंगे। फिर बाबा ने बताया कि जो टाइम है, समय के ऊपर इशारा किया बाबा ने कि इसमें सिवाय सेवा के खत्म कहीं जाना नहीं चाहिए, समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय जमा का खाता करने का चल रहा है। और ये इसमें है एक का पद्म गुणा हुआ। और ऐसा नहीं सोचो, कई बच्चों की बुद्धि में चलता है कि हम सेवा तो कर रहे हैं लेकिन कोई देखता नहीं है हमको। बाबा कहते हैं बाबा सब देख रहा है, बाबा के रजिस्टर में सब ऐड हो रहा है, यहाँ तो फाइलें बहुत होती हैं, बाबा के पास फाइनल जा रहा है, बाबा के पास ऑटोमेटिकली सब जमा हो रहा है, करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा ने बताया था ना, लास्ट मूल्य जो चली थी, बाबा के पास बदन में बड़ा टीवी लगा हुआ है, सब देखता है, एक सेकंड में सब कुछ देख लेता है।
तो तुम्हारे पास दो टीवी, बाबा के पास बहुत बड़ा टीवी,
बहुत बड़ा टीवी है। तो वो तो एक अदृश्य कर्मों की मशीनरी है जो बाबा के, इसमें हमारा संकल्प भी जमा हो रहा है, बोल सब चीजें जमा हो रही है, तो सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो टाइम देखना है हमारा, टाइम कहाँ जा रहा है, और वर्तमान समय तो टाइम हमारे पास बहुत है, सभी ब्राह्मणों के पास, तो ये देखना है टाइम कहाँ, हमारे पुराने संसार के आकर्षण तो नहीं खींच रहे हैं, उनमें हमारी बुद्धि तो नहीं जा रही है, तो ये देखना है। फिर बाबा ने बाप से प्यार की निशानी है उसकी बात बताई है। अगर बाप से प्यार की निशानी है तो क्या होगा, हर आत्मा से प्यार, हर आत्मा से, ब्राह्मण परिवार से नहीं बल्कि हम तो कहते हैं पूरे संसार से, क्योंकि सारी आत्माएं तो उसी की है ना। हाँ, क्योंकि अगर हम जिसकी सेवा करनी है उससे प्यार करेंगे तभी तो सेवा कर पाएंगे। तो हर क्यों, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़ी हुई आत्मा मिली है, तो कितना प्यार होना चाहिए, क्योंकि बाप हर, और मैं हमने देखा ये 4-5 मूल्य जो संडे की चल रही ना, हर मूल्य में एक बात जरूर आई है कि बाबा सबकी विशेषता देखते हैं, इसलिए विशेषताओं से प्यार है, बच्चों से भी प्यार है। तो बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण आत्मा की विशेषता को देखते हुए हर आत्मा से प्यार करना है, ये प्यार की निशानी है। अगर आत्मा से प्यार नहीं है तो बाबा से भी प्यार कम है, तो ये प्यार की निशानी की बात है। और क्या बताया मुरली में, पार्टियों से पहले, हाँ जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया वालों से भी बताया कि हिम्मत अच्छी है, और उन यादगार की बताया, जो पिछले संडे भी यादगार की बात थी कि पांडव बड़े लंबे चौड़े हैं, मजबूत है, वो हमारी मजबूत स्थिति की निशानी है, शिव शक्ति पांडव सेना। और क्या बताया, चैरिटी बिगिंस एट होम, ऑस्ट्रेलिया वालों और शक्तियों की विशालता है कि पांडवों को आगे रखते हैं। और हाँ वो तो अलग बात है, लेकिन शक्तियां तो बहुत वहां संभालने शुरू कर देते हैं उसमें, ऑस्ट्रेलिया में पहले पहले गए तो बड़े लंबे चौड़े पांडव निकले, जो साइकिल माइकल उनके बारे में बाबा बोल रहे होंगे। हाँ और क्या बताया, फिर 3 पार्टियों से मुलाकात है, 3 पार्टियों से मुलाकात है, कौन सी, एक तो बाबा ने कहा सर्व विशेष आत्माएं हैं, तो आपको हर आत्मा की विशेषता देखनी है। बाबा ने कहा एक विशेष शब्द याद रखो तो विशेष आत्मा बन जाएंगे, और फिर विशेष कर्तव्य करेंगे, विशेष बोल, विशेष सोच, विशेष दृष्टि, माना दृष्टि वृत्ति हर कर्म विशेष हो तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो विशेष शब्द हमेशा बाबा कहते याद रखना है, तो विशेषता से संपन्न बन जाएंगे, ना केवल स्वयं बल्कि सबको विशेष आत्मा देखनी, सब में विशेषता देखनी, क्यों, क्योंकि बाबा ने हम सबको होलियंस बनाया, तो होलियंस क्या है, वो तो विशेषताओं को देखता है ना। और फिर बाबा ने स्थिति का आधार बताया, कौन सा स्थिति का आधार क्या है, स्मृति, एक तो स्थान भी है और स्मृति, स्थिति का आधार भी स्मृति है, श्रीमत भी, तो स्मृति बाबा ने कमजोर कहा, कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर, स्मृति शक्तिशाली है तो स्थिति भी शक्तिशाली है। तो हमें देखना है सारे दिन में कौन कौन सी स्थितियां स्मृति रहती हैं, जब हमको स्मृति आ जाती है कि अच्छा टाइटल में स्थित हो जाते हैं तो स्थिति शक्तिशाली बन जाती है। पार्टियों के साथ दूसरी पार्टी जिसकी बाबा ने बात की है, स्थिति का आधार है स्मृति। तो सारे दिन में हमको कौन कौन सी स्मृतियां रहती है, हम यही तो नहीं कहीं सोचते थे मैं तो बहुत कमजोर हूं, मेरे से कोई होता नहीं है, या मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरी बुद्धि में ज्ञान ठहरता नहीं है, योग मेरा लगता नहीं है। बाबा ने कई बार दफा कहा है कि कभी ये सोचो नहीं मेरा योग लगता नहीं है, हमेशा ये सोचो मेरा योग नहीं लगेगा तो किसका योग लगेगा। स्वयं के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग, स्वयं के ही सोच को बदलना है, तो जैसी हमारी स्मृति होगी वैसी हमारी स्थिति बनती जाएगी। दिन भर पूरा अटेंशन रखता है कि कौन कौन सी स्मृति रहती है, वो स्मृति एक स्विच है, जो स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाएगा, रोशनी आ जाएगी जीवन में, प्रकाश आएगा, उजाला आ जाएगा। अंधकार में क्या होता है, डर लगता है, भय होता है, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं ठोकरे खाते हैं अंधकार में, पूरा संसार अंधकार में है। तो बाबा ने हमको ज्ञान की रोशनी दी है, तो ज्ञान की रोशनी के स्विच हमेशा ऑन रखने हैं, ताकि हमारे जो दिल शिकस्त वाला भाव है सारे खत्म हो जाए। और फिर लास्ट में बाबा ने मूल्य में लास्ट पार्ट से क्या कहा, ये जो समय चल रहा है क्या है, ये वरदानी समय है। अपने आप को इतना भाग्यवान समझते हो, ये वरदानी समय है। कर्म भूमि पर मधुबन में आए हैं तो बाबा ने कहा वरदान भूमि पर पहुंच गए, कितने भाग्यशाली हो, भाग्यवान हो। तो स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि ये अभी हमको बाबा ने हमारे हाथ में कलम दी है, कौन सी, श्रेष्ठ भाग्य बनाने की, रेखा खींचने की कलम दी है हमको। तो इसको हमको अभी यूज करना है। तो सारे दिन में हमको देखना है कि हमारे से कौन कौन से कर्म हो रहे हैं। तो बहुत सारी बातें जिनको हम बार बार रिपीट करेंगे तो बुद्धि में ठहरेगा चिंतन, और वो हमारे संस्कार बन जाएंगे। ऐसा नहीं है हम के करते जा रहे हैं कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, कम से कम पहले पहले हमारे ज्ञान के संस्कार बनने चाहिए, और संस्कार फिर स्वतः काम करते हैं, फिर वो याद आ जाते हैं, स्मेल लिंक। तो ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि कई दफा ये भी सोचते हैं कि आपस में चर्चा तो करते हैं या कोई भी है पुरुषार्थ तो करते हैं, जीवन में बदलाव तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कम से कम हमारा ये जो टाइम है, बहुत सारी बातें इसमें हमारे, एक तो समय सफल होता है, दूसरा हमारे जो बुद्धि रूपी बर्तन धीरे धीरे शुद्धि होती जा रही है इसकी, तीसरा हमारे संकल्प धीरे धीरे उनमें बहुत सारा परिवर्तन आता जा रहा है, बुद्धि में ज्ञान का भोजन बढ़ता जा रहा है, हमारी उस ज्ञान का हमारे कर्मेंद्रियों पर प्रभाव पड़ रहा है धीरे धीरे, और योग के लिए वो एक शक्ति का रूप कार्य कर रहे हैं। योग शक्तिशाली कैसे होगा, बिना ज्ञान के शक्ति नहीं है। ज्ञान भी क्या है, ज्ञान तलवार है जो हमारे पुराने संस्कारों को काट के रख देगा, और बंधनों को काटेगा तो ही आत्मा ऊपर उड़ेगी। तो ये बहुत सारी चीजें, पिछाड़ी तक हमको पुरुषार्थ करते रहना है। हाँ, जब बीच में बताया ना कि समझ आ गए तो स्वतः पुराने छूट जाते हैं, और बीच में विदेशियों से भी कुछ बात की है, उसमें भी जिक्र किया है कि कहीं कहीं संस्कार पिछले हलचल में करते हैं आते हैं, लेकिन वो हिसाब किताब है, हलचल है, लेकिन हिम्मत अच्छी दिखाई है जो फिर आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते हैं और बढ़ाते हैं दूसरों को। तो बातें बीच में ऑब्स्टेकल आएंगे, विघ्न आएंगे, भले स्वयं के संस्कार आएंगे, दूसरों के आएंगे, पकड़ के नहीं बैठ जाने का, निकल जाने के आगे, क्योंकि लंबी यात्रा है ये, और यात्रा सुखदायी है। तो बहुत सारी बातें थी। हाँ, भूल नहीं सकती, लास्ट में ये पार्टियों से बात की, बाप से संबंध है, याद हो, प्यार है, याद ना ये हो ही नहीं सकता है, उसको भूलना मुश्किल है, जिससे हमारा प्यार हो जाता है सपने में बही आता है ना। तो कहीं क्लिप देख रहे थे तो उसमें दिखाया कि माता जी थे, वो शायद एक प्रोग्राम आता टीवी में, तो कौन बनेगा करोड़पति, तो माता जी वो अमिताभ बच्चन से बात कर रहे थे, तो उनके साथ मिलना तो बड़ा मुश्किल से होता उनको। अमिताभ बच्चन ने फोन किया होगा, भाई अभी आपका टर्न आ गया मिलने के लिए टर्न आ गया, तो वो तो बहुत खुश हो गए, पहुंच गए मिलने के लिए। तो मिलने के लिए पहुंचे तो बोला, जब से आपका फोन आया ना तो सपने में भी आप ही आते हैं, सवेरे देखो शाम देखो, कि भाई फोन है, बड़ी हंसते का फोन आता तो नेचुरली है, उनको सारा दिन आगे पीछे दूसरी बात कुछ सूझेगी नहीं, वही सूझेगा। तो जैसे उनके सामने आप बातचीत चल रही थी तो उनका पीछा, उनका परिचय लिया कि कहाँ से आए, क्या आया है, वो सब दिया। फिर उनका पूछा, आपके साथ में कौन कौन आया, तो बताया ये आए हैं, तो बताया आपके हस्बैंड भी, हाँ आए हैं, तो बताया उसको वो हस्बैंड भी पीछे बैठा है। तो हस्बैंड के सामने वो बोल रही है कि आप सपने वही आते, तो उसने पूछा हस्बैंड नहीं आता है, बोला नहीं, क्योंकि जब से फोन आए आप ही आते, क्योंकि बोला मेरा बचपन से आपसे और दूसरे एक्टरों का नाम लिया कि बड़ा लगाव रहा है। तो बोला आपने शादी तो उनसे की, तो हम सपने में क्यों रहे, तो बोला तो बचपन से ही हमारा ऐसे है। तो बोला आप पूछो, किसी को भी पूछ लो, किसी भी पत्नी को सपने में पति आता है, किसी को नहीं आता, बोला। तो माना जिससे प्यार होता है वो सपने वही आता है, तो ये पतियों का पति एक ही है। कहने का अर्थ ये है कि जिसके साथ प्यार होता है वो स्वतः याद आता है, हाँ, और उसके वाइब्रेशन हमारे से निकलते रहते हैं उसके भी, तो हमारे साथ। इसलिए बाबा ने कहा बाप को प्रत्यक्ष करने की विधि क्या है, कि सदा बाप को साथ रखो। तो ये बातें थी, हम फिर से रिवाइज करेंगे। तो पहले तो बाबा ने होली अंशों की सभा देखी, रूहानी होली अंशों की सभा है, होली अंश बुद्धि परखने की शक्ति को हमको बढ़ाना है, और परखने की शक्ति होगी, तो हम उसी के आधार पर हमारे भाव और भावनाएं परिवर्तन होंगे। और फिर हमारा एक बात और बताया कि दूसरों के वृत्ति का भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारी वृत्ति का प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। दूसरा, होलियंस की वृत्ति हमेशा कल्याणकारी वृत्ति होनी चाहिए, कैसे भी आत्मा हो। तीसरा, होलियंस दृष्टि सदा आत्मिक शुद्ध स्नेहमय दृष्टि होनी चाहिए। चौथा, होलीहंस मुख बोल, हमारे बोल्स हमेशा सुखदायी उमंगसा वाले वरदानी बोल होने चाहिए, उमंगसा वाले आगे बढ़ाने वाले ये होने चाहिए। फिर बाबा ने अटेंशन दिया, ये चारों बातें जीवन में है तो क्या क्या हो जाएगा, उसके ऊपर इशारा भी दिया कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, सुलटा करो, आपका काम है सुलटा करना। जैसे बताया ना आज के मूल्य में जो स्लोगन था कि कोई चोट पहुंचाता है लेकिन तुम्हारा काम है बचना, तो इसी तरह से फिर बाबा ने बताया स्लोगन सेफ्टी का साधन एक वो बताया, वैजयंती माला के बारे में बताया कि आप स्वयं पर विजय, सर पर विजय, प्रकृति पर विजय। फिर बाबा ने स्थिति का आधार बताया क्या है, फिर समय को नष्ट नहीं करना, स्थिति के आधार है स्मृति, जैसी स्मृति वैसी हमारी स्थिति बनती जाएगी। और समय कभी वेस्ट नहीं करना है, सेवा का खाता जमा हो रहा है ऑटोमेटिकली बाप के रजिस्टर में जमा हो रहा है, सोचने की जरूरत नहीं है, कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है। फिर बाबा ने बताया एक ये विशेष शब्द याद रखो, तो विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे, सोचना बोलना करना हर चीज विशेष हो। फिर ये भाग्यवान अपने आप को समझते हो, और जिससे प्यार होता है वो स्वतः याद आता है। तो बहुत सारी बातें हैं, जितना बार मुरली पढ़ेंगे वो हमारे संस्कारों में रचती बसती जाएगी। ओम शांति।